ये ग्रंथ समझने में बहुत ही सरल है, आसान है, और इसमें से कई सारे ऐसे सब्जेक्ट मैटर होंगे जो आपने इस्कॉन में जुड़ने के टाइम पे सुने हो, क्योंकि प्रभुपाद जी ने इसके जो तात्पर्य लिखे हैं बहुत सरल भाषा में लिखा है। और कोई भी नया आदमी अगर ये ग्रंथ को पढ़ता है, छोटा सा ग्रंथ है, तो वो आपके भगवद गीता जो 6 सेशन कोर्स होता है, उस कोर्स का समरी के रूप में आपको प्राप्त हो ही जाता है इस ग्रंथ में। इट्स वेरी यूजफुल ईशोपनिषद ग्रंथ, तो आज उसको हम चर्चा करेंगे। ईशोपनिषद का अर्थ होता है कि वह ज्ञान जो हमें ईश्वर या भगवान के करीब ले जाए, उनके नजदीक ले जाए, वही कौन उनके समीप ले जाए। ईशोपनिषद वो ऐसा ज्ञान है जो हमें पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण के समीप ले जाए। ईशा, ईश का अर्थ होता है कि जो नियंता होते हैं, उसे ईश कहते हैं, ईश्वर। ऐसे कहते हैं ना, देवेश तो देव के ईश्वर, फिर गोकुलेश तो गोकुल के कंट्रोलर, गोकुलेश, ऋषिकेश ऋषि के स्वामी, इंद्रियों के कंट्रोलर, इंद्रियों के नियंत्रण, ऋषिकेश, गुड़ाकेश जिसने निंद्रा को जीत लिया है, तो वो ईश शब्द से आता है, ईश जो कि नियंता है। और उपनिषद का अर्थ होता है पास में जाकर के बैठना, उपनिषद। उप का अर्थ होता है पास में, और जब उसको साथ में बोला जाता है उपनिषद, इसका अर्थ होता है कि पास में जाकर बैठना, जैसे उपवास। उपवास का अर्थ होता है भगवान के पास रहना, उसको उपवास कहते हैं। फास्टिंग तो दैट इज अ सेपरेट थिंग, वो बाय प्रोडक्ट है फास्टिंग, बट उपवास का अर्थ होता है भगवान के पास में रहना, दैट इज उपवास। तो उपनिषद जो है वो वेदों का तत्व ज्ञान का जो हिस्सा होता है वो हमारे सामने प्रस्तुत किया जाता है उपनिषदों के माध्यम से। ये हम इंट्रोडक्शन आज पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन, और अगर समय मिलेगा तो हम इन्वोकेशन जो आवाहन है उसको हम संक्षिप्त में चर्चा करेंगे आज। तो उपनिषद के विषय में ऐसा कहा जाता है, वेदों के विषय में, जैसे भगवद गीता में आपने तात्पर्य में पढ़ा था टेक्स्ट नंबर 45 में, सेकंड चैप्टर में, कि वेद जो है वो 3 गुणों से भरे है। वेद त्रैगुण्या विषया वेदा, ये 3 गुण वेदों का विषय वस्तु है, या मैं वेद 3 गुणों से भरे हैं, और अर्जुन तुम निस्त्रय गुण्य बन जाओ, 3 गुणों से पर हो जाओ, निस्त्रय गुण्य भवा आ गया। ऐसा भगवान ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जनरल पब्लिक 3 गुणों में इंद्रिय भोग के लिए जाती है, इंद्र तृप्ति के लिए, और फिर धीरे 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 उसका पालन करने से क्रमशः उनकी प्रगति होती है आध्यात्मिक स्तर तक पहुंचने के लिए। लेकिन अर्जुन के लिए भगवान ये सिस्टम फॉलो करने को एडवाइस नहीं किया थे, अर्जुन को मना किए, तुम इस वेदों के चक्कर में मत पड़ना, तुम सीधा मेरे पास आ जाओ, ऐसा भगवान ने डायरेक्ट उनको एग्जाम्पल ये आदेश दिया था। क्योंकि वेद की शुरुआत होती है ब्रह्म जिज्ञासा से। वेद जो होता है उसमें ये पहला सूत्र है ब्रह्म जिज्ञासा, था तो ब्रह्म जिज्ञासा। अगर आध्यात्मिक विषय में जब प्रश्न पूछे जाते हैं वहां से शुरू होता है, लेकिन ये पूरे भरे हैं 3 गुणों से। जब कर्मकांड का जो विषय वस्तु है वो वेद में प्रचुर मात्रा में दिया गया है, और जब ये कर्मकांड का जो पूरा सेक्शन खत्म होता है तो उपनिषदों के माध्यम से आध्यात्मिक साक्षात्कार प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जाता है। यद्यपि वो भगवत गीता आदि जो अलग अलग उपनिषद है, गीतोपनिषद कहा गया है, ये सारे अलग अलग वेद का अंश ही माने जाते हैं। ये उपनिषद जो है इट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ महाभारत, इज द फिफ्थ वेद। महाभारत को पंचम वेद बोला जाता है, और इस पंचम वेद का जो उपनिषद है वो गीतोपनिषद, दैट इज भगवद गीता, ऐसा माना जाता है। उपनिषद एक रूप से ये दिखाता है कि आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत वहां से होती है, इट्स अ मार्किंग ऑफ द बिगिनिंग। तो उपनिषद की जब चर्चा करते हैं या तत्वज्ञान की चर्चा करते हैं, एक सेकंड जस्ट मिनट, उपनिषद अधिकतर केस में ऐसा देखा जाता है कि उसमें निराकार के विषय में ज्ञान दिखाया जाता है, या फिर आध्यात्मिक विषय को वस्तु में, या फिर कोई रहस्यमय बात चीज उसके अंदर बताई जाती है। ये सब चीज कर्मकांड में नहीं है। कर्मकांड में अधिकतर क्या देखा जाता है, कर्मकांड में देखा जाता है कि ये यज्ञ करोगे तो ये तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, ये करोगे तो ये स्वास्थ्य प्राप्त होगा, यहाँ ये अनुष्ठान करोगे तो इस तरह से। बट उपनिषद में आध्यात्मिक विषयों की बात ज्यादा हुई है। जैसे इसी इसी में ही देखिए, ईशोपनिषद में आगे आएगा, चौथे मंत्र में कहा गया है कि भगवान जो है वो मन की गति से भी तेज चलते हैं, और उनके उनसे अधिक तेज कोई नहीं है। मंत्र 5 में ऐसा है कि भगवान चलते भी है और नहीं भी चलते, वो दूर भी है और पास में भी है। और मंत्र 8 में ऐसा कहा गया है कि भगवान जो शरीरधारी नहीं, अर्थात निराकार है, ओमनिसेंट, तब सर्वशक्तिमान है, किसी के बियॉन्ड रिप्रोच, तो शुद्ध है, शुद्धम अपाप विद्धम, तो ये सब भगवान के गुणों का वर्णन है। जो लेकिन सुनने में क्या आएगा, भगवान निराकार है, भगवान शुद्ध है, भगवान सत्य है, इस तरह के शब्द आपको प्राप्त होता है। तो इन शॉर्ट ये ईशोपनिषद जो है, दैट इज उपनिषद, इट अपीयर्स टू बी फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी, बट दैट इज कमिंग फ्रॉम ट्रांसेंडेंटल स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग। उपनिषद जो है वो यजुर्वेद का अंश है, और इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी अस्तित्व में है उस सब के स्वामी के रूप में भगवान को घोषित किया जाता है इस उपनिषद के माध्यम से। भगवान सारे संसार में जितना भी अस्तित्व है उस सब के स्वामी है, दैट इज द मेन सब्जेक्ट मैटर ऑफ ईशोपनिषद। और 108 उपनिषद है, देयर आर 108 डिफरेंट उपनिषद, जिसके आपने प्रभुपाद के ग्रंथों में उपनिषदों के नाम शायद सुने भी होंगे आगे पहले कभी। कोई बताना चाहता है उपनिषदों के नाम, प्रभुपाद के तात्पर्य में आपने सुना हो?
यस प्रभु, तैतरीय उपनिषद, श्वेता श्वेतर उपनिषद,
ओके,
मुंडक उपनिषद, कठो उपनिषद,
ओके,
गोपाल तपनी उपनिषद,
या और
केना उपनिषद।
और
प्रवजी कली संतरण उपनिषद और वो श्वेतश्वतर उपनिषद शायद हो गया पता नहीं
श्वेतश्वतर
हाँ श्वेत
सो में सब में कुछ बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन हरिक उपनिषद में से है जैसे बृहदारण्यक उपनिषद वो भी आपने सुना है जिसमें ये अहम ब्रह्मास्मि सुना है ना आपने तमसो मा ज्योतिर्गमः अहम ब्रह्मास्मि ये सब बृहदारण्यक उपनिषद में से पाया जाता है फिर आचार्यवान पुरुषो वेदा ये प्रसिद्ध श्लोक जो है ये छंदों के उपनिषद में से है फिर अभी अभी आपने बताया वो कौन सा कली संतरण उपनिषद तो कली संतरण उपनिषद में कौन सा प्रसिद्ध श्लोक है
हरेर नाम वो केवल
और कली संतरण उपनिषद में हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे इति षोडशकम् नाम्नाम् कलिकल्मषनाशनम् नाथपरतरूपाय सर्वदेशे दृश्यते ये जो हमारा महामंत्र है जो प्रसिद्ध श्लोक हमारा एक महामंत्र इज कमिंग फ्रॉम कलिसंतरण दैट इज अगेन यजुर्वेद कलिसंतरण उपनिषद फिर कठोपनिषद नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विद्धादिकामान मुंडक उपनिषद में तद्विज्ञानार्थं सगुरुमेवाविगच्छेत् श्वेता सत्र उपनिषद में है यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु बालस्य सतभागस्य आपने सुना है ना बालाग्र सतभागस्य तय श्वेता सत्र तैत्तरीय उपनिषद में है रसो वही सह तो देयर सो मेनी उपनिषद प्रभुपाद ने अलग अलग कोट किए हैं अलग अलग उपनिषदों को अपने तात्पर्य में और इन सभी 108 उपनिषदों में जो सबसे पहला उपनिषद है द फर्स्ट उपनिषद वो है ईशो उपनिषद That is उपनिषद क्योंकि एक उपनिषद डायरेक्टली भगवान की महिमा को प्रस्थापित करते हैं विशेष करके अधिकतर जितने भी जो आध्यात्मिक विषय वस्तु पर उसमें अधिक इंफॉर्मेशन दी गई है वेदों का भाग है आई मीन इज कमिंग फ्रॉम वेदास ओनली लेकिन सिलेक्टेड पोर्शन ऑफ वेदास यद्यपि वेदों के वेद जो है वो कलयुग की प्रजा के लिए समझना बहुत ही मुश्किल है कलयुग के लोग वेदों को ठीक से समझ नहीं सकते वेदों को समझने के लिए एनीवे वी नीड अ लॉट ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल ब्राह्मण नहीं होता वो वेद को स्पर्श भी नहीं कर सकता और कलयुग के जो लोग हैं उनके विषय में श्रीमद् भागवत में प्रसिद्ध श्लोक है प्रायणाल पायुष सभ्या प्राय कलयुग के लोग कैसे होते हैं कम आयुष्य वाले बहुत जल्दी मर जाते हैं कम आयुष्य 100 बस अगर आप सतयुग के लोग को बोलो सतयुग वाला कोई हमें पूछे अरे तुम्हारा आयुष्य कितना है और हम कहेंगे कि हम मैक्सिमम 100 साल जीते तो हंसी आएगी उसको बस 100 साल हम तो कितना 100,000 साल जीते हैं 1,00,000 साल 1,000 गुना ज्यादा तो इस शॉर्ट लिव्ड फिर भी हमें ऐसा लगता है ओ हम 100 साल अब तो कोई 100 साल जीता भी नहीं है और कलयुग में आयुष्य कम होता जाता है मेमोरीज पुअर हो जाती है याद हम याद नहीं रख पाते कुछ भी पहले तो एक बार सुनने से याद रह जाता था सुती धारा आजकल 1,000 बार बताने के बाद भी हम भूल जाते हैं हमें ऊपर से ये टेक्नोलॉजी मोबाइल फोन इस इन्होंने तो मेमोरी को पूरा सत्यानाश कर दिया खत्म आई रिमेम्बर मुझे याद है कि पहले के समय में हम लोग फोन नंबर कंटेस्ट रखा करते थे सबके फोन नंबर्स लेकिन आए अगर आप कई बार खुद का फोन नंबर भी नहीं पता होता है लोगों को हमने बोला आपका नंबर क्या है तो वो क्या कहेंगे बोले मैं आपको मिस कॉल देता हूँ मुझे याद नहीं है ऐसे सो दिस इज पुअर मेमोरी और ऐसी चीज में वेद को समझना इज वेरी डिफिकल्ट प्रायण अल्पायुष फिर मंद मंदा मंद है, आलसी, बहुत ही आलसी होते हैं, पीपल आर वेरी लेजी, उनको कुछ करना ही नहीं होता है, कुछ करने का पैसा भी दो फिर भी कुछ नहीं करेंगे, पीपल दे डोंट डू है कुछ, बस उनको पड़े रहो गहने की तरफ एकदम, दे आर वेरी हैप्पी, बहुत अच्छा लगता है पड़े रहना, कुछ नहीं करना, तो मंदा सुंद मत है वो, कम कम बुद्धि वाले, उनको समझ नहीं आती बात को, सुमंद मत है वो, मंद भाग्या, मंद भागी मीन वो भाग्य ही पूरा होल वाला है, भाग्य बर्बाद हुआ है उनका, तो उनके भाग्य में सब दुर्भाग्य दिखाई देता है हमेशा सब जगह, अनलकी, मंद भाग्य, उपद्रुता, उपद्रुता का अर्थ होता है मिसअंडरस्टैंडिंग अच्छी लगती है उनको, कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो दैट इज कंसिडर्ड कलयुग का मार्क, वो पर्टिकुलर वो जगह कलयुग बन जाता है, कलयुग का इन्फ्लुएंस माना जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग, उपद्रुता, व्यग्र रहते हैं, झगड़ा करना इट्स लाइक अ हॉबी, झगड़ा करना बहुत पसंद होता है, दिस इज ऑल कलयुग, श्रीमद भागवत में फर्स्ट कैंटो में ये श्लोक है, तो कलयुग को मनुष्य के लिए समझाने के लिए पहले एक ही वेद था, उस एक वेद में से चार वेद बनाए गए व्यासदेव कृपा करके, व्यास शब्द का अर्थ होता है विभाग करना, विभाजित करना, उसको व्यास बोलते हैं, तो एक वेद में से चार अलग अलग वेद बनाए गए, ऋग, साम, अथर्व एंड यजुर, ऐसे हर एक गुण का प्राधान्य इसमें भी है, अथर्व वेद जो है वो अधिकतर तमोगुणी लोग और उस प्रकार के लोगों के लिए अधिक उसके अंदर बताया गया है, और तांत्रिक विद्या और वो सब उसके अंदर अधिक, यजुर्वेद सत्वगुण जिसमें विष्णु की पूजा के विषय में अधिक महत्व बताया गया है, इस तरह से अलग अलग वेदों में ऋग, साम, अथर्व, यजुर और ये सबको एक एक शिष्य को व्यासदेव ने इस सबका विचार दे दिया, बाद में फिर उन्होंने सोचा कि कलयुग के लोगों को खासकर कलयुग में पाप योनि अधिक होती है, भगवद गीता के अनुसार स्त्री या वैश्य तथा शूद्रास एपिसु पाप योनयः, तो पाप योनि अधिक होती है द्विज बंधु, केवल नाम के ही ब्राह्मण होते हैं, बाकी उसको ब्राह्मण नहीं बोल सकते, द्विज बंधु बोलते उसको, जो ब्राह्मण का बंधु अर्थात ब्राह्मण नहीं होता है, क्षत्रिय बंधु, क्षत्रिय नहीं होता है, केवल उस नाम का ही होता है वो केवल, तो उन लोग की सहायता के लिए पहले सबसे पहले महाभारत का रचना किया, महाकाव्य महाभारत, हिस्ट्री ऑफ इंडिया वो उन्होंने रचना किया व्यासदेव ने, और ये हिस्टोरिकल है और बहुत ही इंफॉर्मेटिव है और आध्यात्मिक विषय वस्तुओं को बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत किया है और कल्चरली बहुत ही रिच है महाभारत, कोई भी उसको पढ़ता है तो इसमें बहुत ही भारत की संस्कृति आप देख सकते हो, साथ साथ में आपको आध्यात्मिक ज्ञान भी प्राप्त होता है। फिर उन्होंने पंचम वेद के बाद 18 पुराणों की रचना की, अलग अलग पुराण, सो मैनी, और अठारह पुराणों के पश्चात वेदांत सूत्र की समरी के रूप में, वेदों की समरी के रूप में वेदांत सूत्र बनाया उन्होंने, वेदांत सूत्र खास करके जो तत्वज्ञानी लोग और विद्वान लोग और जो पंडित लोग होते हैं उन लोगों की आसानी के लिए सारे जो वेद है उसको फॉर्मूला के रूप में, जैसे समझ लो कि भगवद गीता का एक चैप्टर है तो उसका एक श्लोक होगा, एक श्लोक में सारा फर्स्ट चैप्टर भगवद गीता का आया गया, ऐसे दूसरे 18 श्लोक में 18 चैप्टर भगवद गीता के, तो दैट इज कॉल्ड फॉर्मूला, फॉर्मूला मीन्स वन वर्ड वन लाइन एंड एंटायर सब्जेक्ट मैटर इज गिवन, दैट इज वेदांत सूत्र, सेंस ऑफ वेदा, वेदांत सूत्र वेद जहां पर समाप्त होता है उसका और उसमें आध्यात्मिक विषय वस्तु का वर्णन अधिक है। इतना सब करने के पश्चात भी व्यासदेव को मन में संतोष नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने नारद जी का सहायता मांगा और नारद जी आए वहां पर आकर के व्यासदेव को अच्छे से मस्त डांटा, तो तुमने व्यास हो तो क्या हो गया, लेकिन तुमने गलती किया है, ये व्यतिक्रम है तुम्हारा, ये तुमने ठीक नहीं किया। वेदांत का अर्थ होता है जहाँ वेद समाप्त होता है, तो वेदांत ज्ञान का जो अंतिम सार है वो तो कृष्ण को जानना है, वही तो अंतिम ज्ञान है। और तुमने इस वेदांत सूत्र को बनाया तो सही, लेकिन इसका लोग उससे भक्ति को स्पर्श ही नहीं हो रहे। मीन्स भक्ति तुम्हारा उद्देश्य था अच्छा, बट पीपल वो पिक एंड चूज वाले, दे डू नॉट अंडरस्टैंड दिस। तुमने एकदम स्वच्छ रूप से भक्ति का महिमा प्रस्तुत नहीं किया है, इसलिए यू आर डिस्टर्ब, तुम परेशान हो। तो क्या किया जाए, तो तुम वेदांत के ऊपर भाष्य लिखो जिसमें केवल भक्ति का ही महिमा हो, एंड दैट इज श्रीमद् भागवतम। वो श्रीमद् भागवतम के रूप में व्यासदेव ने प्रस्तुत किया, जिसका शुरुआत है जन्माद्यस्य यतः अन्वयात्, संसार में से जो कुछ भी है, जो जिनसे प्रकट होता है, जन्मादि यस्य यतः, जो कुछ भी है सब कुछ कृष्ण में से, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, सब कुछ उनसे प्रकट होता है कृष्ण से। निगम कल्प तरो गणितम फलम धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मित सदानाम सताम। तो ये दो चार श्लोक है शुरुआत में, जिसमें एक क्लियर कट बताया गया है कि ये जो शास्त्र है ये सारे वेदों का पका हुआ फल है। गलितम फलम निगम कल्पतरोर, अगर सारे वेद को एक वृक्ष की भांति माना जाए तो इस वृक्ष का जो पका हुआ फल है गलितम फलम, वो है श्रीमद् भागवतम। और ये सब प्रकार की चीटिंग जो रिलीजन है उसको त्याग करता है, उसका रिजेक्शन, उसको रिजेक्ट करता है। धर्म प्रोजित कहते बोलते और तापत्रन उन्मूलनम, सब प्रकार के कष्ट को पटक देता है, बाहर निकाल देता है। तो दैट इज श्रीमद् भागवतम। सो इन शॉर्ट दिस इज द एंटायर समरी ऑफ व्यास देव ने जिस तरह से जो बनाए अलग अलग साहित्यों को, तो ये सब साहित्य जो है उसको तीन प्रस्थान में बांटा जाता है, जिसकी हमने एक बार चर्चा आपसे करी थी भगवद गीता में। उसको बोलते हैं प्रस्थान त्रय, तीन प्रकार के प्रस्थान। एक होता है, आप किसी को याद है तीन प्रस्थान कौन से? विद्वान लोग हो आप, पता तो होगा ही। ओके, याद नहीं आ रहा है। श्रुति से
होते क्या है
प्रस्थान में से विभाग, तीन तीन विभाग में माना जाता है इस
कृष्ण। वो ये श्रुति स्मृति ये सब रहता है इसमें।
तीन प्रस्थान हमने पढ़ा था एक बार भगवद गीता में, श्रुति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान और न्याय प्रस्थान। लॉजिक प्रभुपद एक जगह बताए थे श्रुति प्रस्थान। श्रुति प्रस्थान मीन्स जो कहां से सुना गया है, ओरल रिसेप्शन, जो चार वेद उसके अंदर आता है, चार वेद और 108 उपनिषद, ये सब श्रुति प्रस्थान में आता है। फिर स्मृति प्रस्थान आता है जिसको याद किया जाता है, स्मृति, तो 18 पुराण और महाभारत रामायण आदि इतिहास, पंचम वेद महाभारत, तो ये स्मृति प्रस्थान है। और वेदांत सूत्र है वो न्याय प्रस्थान है। न्याय प्रस्थान इज फुल ऑफ लॉजिक, जैसे हमने कहा ना फॉर्मूला है, तो उसमें लॉजिक नहीं है, लॉजिकल बेसिस के ऊपर उसको किया प्रस्तुत किया गया है। तो न्याय प्रस्थान वेदांत सूत्र, उपनिषद श्रुति प्रस्थान, एंड गीता भागवत और पुराण सब स्मृति प्रस्थान है। और अधिकतर केस में क्या देखा जाता है, मायावादी लोग, शंकराचार्य के फॉलोअर्स या मायावादी लोग जो होते हैं, वो केवल इसमें से दो प्रस्थान को स्वीकार करते हैं। कौन से दो प्रस्थान को? एक होता है न्याय प्रस्थान और श्रुति प्रस्थान। स्मृति प्रस्थान को रिजेक्ट करते हैं, जिसमें महाभारत, रामायण, पुराण ये सब आता है, उसको रिजेक्ट करते हैं अधिकतर केस में, ऐसा देखा जाता है। तो ये ईशोपनिषद जो है वो उपनिषद का सबसे प्रमुख अंग है, मीन द फर्स्ट उपनिषद, और ये आता है श्रुति प्रस्थान के अंतर्गत। श्रुति प्रस्थान अर्थात सारे जो वैदिक शास्त्र है अलग अलग प्रकार के, उस सब वैदिक शास्त्र में से हम एक डायरेक्ट शास्त्र के रूप में भगवद गीता इज अ गीतोपनिषद कंसिडर्ड, वो स्मृति प्रस्थान में आता है। श्रुति प्रस्थान में से हम ईशोपनिषद पढ़ेंगे, और भक्ति संबंधित जो साहित्य है उसमें हम दो ग्रंथ पढ़ते हैं, नेटर ऑफ डिवोशन और नेटर ऑफ इंस्ट्रक्शन। वेदांत सूत्र की चर्चा हम नहीं करते। तो आप लोगों ने अभी ऑलरेडी स्मृति प्रस्थान में से भगवदगीता सीखा, श्रुति प्रस्थान में से हम ईशोपनिषद की चर्चा करेंगे। तो कृष्ण कॉन्शियसनेस जो हमारी मूवमेंट है, ये वैदिक साहित्य पर पूर्ण रूप से आधारित है, 100% ऑथराइज्ड बाय वैदिक साहित्य। हम कुछ भी मन गलत कुछ भी नहीं होता है। यस, और कोई कुछ पूछना चाहते थे?
यस प्रभु, प्रभु एक दो क्वेश्चन है। जैसे ये मनुसंहिता जो है, जो मतलब हमने प्रभुपाद के कभी कुछ लेक्चर सुना है, जो लाइक अ लॉ बुक, तो ये न्याय प्रस्थान में क्या आता है? ये
मनुसंहिता न्याय प्रस्थान, आई डोंट थिंक सो, इट मस्ट बी श्रुति प्रस्थान, सॉरी श्रुति प्रस्थान।
ओके, और प्रभु आपने बताया कि व्यासदेव ने 18 पुराण लिखने के बाद फिर नारद मुनि आके, तो मतलब तो 17 पुराण लिखे थे पहले?
या आई मीन भागवत इज कंसीडर्ड टू बी द टॉप ऑफ ऑल द पुराणस, दैट इज आई नीड टू चेक इट वेदर 17 और 18, बट शास्त्र में ऐसा मेंशन है कि पुराणों की रचना करने के पश्चात उन्होंने श्रीमद् भागवतम लिखा है।
राइट, थैंक यू। और प्रभु ये उपनिषद की रचना फिर कैसे, मतलब इज इट लाइक, मतलब जैसे प्रभुपाद मतलब कुछ जगह बताया है कि इट इज सप्लीमेंट्री टू वेदास, राइट? तो मतलब उपनिषदों की रचना मतलब कैसे की, मतलब व्हाट स्टेज ही डिड इट इन?
हाइलाइट्स ऑफ द वेदा मेनली वी कैन कॉल इट, इन अदर वर्ड्स इस वेदों का जो मुख्य मुख्य जो बहुत ही, जैसे प्रभुपाद के ग्रंथ है भगवद गीता, उसमें से हमने राज विद्या करके एक बुक बनाया, राज विद्या। फिर ऐसे प्रभुपाद के अलग अलग ग्रंथों को छोटी छोटी किताब के नाम से प्रस्तुत किया। सो इन द सेम वे वेदों का जो 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 बहुत ही महत्वपूर्ण अंश होते हैं उसको, मीन्स उसका जो ज्ञान है उसको उपनिषदों के माध्यम से प्रस्तुत किया। इट कैन बी इजियर टू अंडरस्टैंड, जो लोग सारे चार वेद नहीं पढ़ सकते, अगर वो केवल 108 उपनिषद पढ़ लेते हैं तभी भी उनको वेदों का जो मेन पर्पस है वो समझ आ जाता है।
राइट, तो प्रभु जैसे जैसे ये पुराणों में ऐसा है कि जैसे 6-6-6 का डिवीजन हुआ है, राइट, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, तो ऐसे पुराणों में कुछ ऐसे कुछ डिवीजन है विच इज सिंपल, जिस सिंपल टू अंडरस्टैंड, या जिसमें जैसे जैसे ईशोपनिषद है, गोपाल तापनी उपनिषद है, जो जो जिसमें भगवान के महिमा के बारे में, और जो हमने कुछ कोट्स रेफर किया है, उससे ऐसा लगता है कि उसमें भक्ति का टिंज है, तो और कुछ उपनिषदों में शायद नहीं होगा, तो ऐसा कुछ प्रभु है?
हाँ, मेरे पास एग्जैक्टली फिगर कोई नहीं है कि 108 में से कौन से डिवीजन में है कौन सा, बट आई कैन चेक, आई कैन फाइंड आउट।
ठीक है, नो प्रॉब्लम।
हरे कृष्ण बाबूजी, प्रभु जी आपने जो ये सभी समझाया उसमें कुछ शॉर्ट में कुछ समझाया, अभी कुछ समझ में नहीं आया ये प्रस्थान और मनुष्य प्रस्थान और कुछ भी।
हाँ, ये समझने के लिए मैं आपको एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग में इसके समझ के रूप में ऐसा समझ सकते हो आप कि जो भी साहित्य वेद व्यास जी ने बनाए उसमें से डायरेक्ट व्यास जी के द्वारा जो अलग अलग उपनिषद बनाए गए उसमें से हम पहला उपनिषद पढ़ने वाले हैं ईशोपनिषद। ये इसका मूल समरी ये है कि सारे ग्रंथ, इतने सारे ग्रंथ बनाए हैं वेद व्यास जी ने, और उसमें से ईशोपनिषद जो है वो पहला उपनिषद है 108 में से, तो उसकी हम चर्चा करने वाले। श्रुति स्मृति और न्याय ये तीन अलग अलग कैटेगरी है वैदिक शास्त्रों की, लेकिन हम अभी श्रुति अर्थात जो ओरल रिसेप्शन, किसी ने बोला और किसी ने सुना, दैट इज ओरल रिसेप्शन, दैट इज श्रुति प्रस्थान। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण अंडरस्टैंड समझने की बात केवल यही है यहाँ पर हमें, कि हम जो ग्रंथ पढ़ने वाले हैं वो ग्रंथ क्या है, बस ये हमें इतना सब प्रभुपाद जी के इंट्रोडक्शन में ये सब इसलिए बताया गया है कि हम ईशोपनिषद को समझ पाए कि ईशोपनिषद जो है वो एक्चुअली ग्रंथ कौन सा है, क्या ग्रंथ है, दैट्स द आइडिया। तो हमें इस तरह से इसको समझना चाहिए कि ये डायरेक्ट वेदों का अंश है, यजुर्वेद का ये अंश है ईशोपनिषद, एंड वी आर स्टडिंग दैट, इज दैट फाइन। अच्छा आप कुछ पूछ रहे थे, सॉरी माधवी आप कुछ पूछ रहे थे।
प्रभु जी मैं भूल गई, मैं कुछ पूछने वाली थी।
ओके फाइन, एनीवे सो
हरीश हाँ, तो इस देर नहीं स्पेसिफिक रीजन के श्री गोपाल जी ने ईशो उपनिषद का ही ट्रांसलेशन किया, नॉट रिमेनिंग एनी ऑफ द उपनिषद, इस देर नहीं पर्टिकुलर रीजन वाइज श्री
गोपाल। आई अंडरस्टैंड ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं, लेकिन आई अंडरस्टैंड कि इस जैसे हमने पहले चर्चा किया कि ईशो उपनिषद जो है वो इस बात के ऊपर बहुत बल देता है पूरे उपनिषद में, जितना भी अस्तित्व है उसका एकमात्र स्वामी कृष्ण है, इज द ओनली कंट्रोलर एंड द मास्टर। सो प्रभुपाद मस्ट हैव कंसीडर्ड दैट दिस इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड एट द सेम टाइम वेरी क्रूशियल पॉइंट दैट ही इज द सुप्रीम पर्सनालिटी, इज द मास्टर। और ऑल्सो बिकॉज इन ऑल द उपनिषद 108 जितने भी उपनिषद उसमें ये सबसे पहला उपनिषद है, फर्स्ट उपनिषद माना जाता है। So this is maybe one of the reasons. I am not sure, but this is maybe one of the reasons that Prabhupada translated this Ishopanishad first.
Prabhuji, जो अन्य उपनिषद हैं, उनमें भगवान श्री कृष्ण की ही प्रभुत्वता को दर्शाया जाता है या कोई और, मतलब demigods के बारे में भी कुछ है?
नहीं, अधिकतर विष्णु के सारे वेद में भी विष्णु के विषय में अधिकतर अधिक चीज बताई गई है, मोस्टली विष्णु का ही गुणगान होता है। कुछ कुछ जगह ऐसा है कि उपनिषदों में नहीं बल्कि वेदों में कहीं कहीं जगह पर है, उपनिषद में भी हो सकता है, इसमें कुछ एकाध चैप्टर या कुछ एकाध अंश जगह कहीं पर देवी को या फिर किसी देवताओं को ज्यादा गुणगान किया हो, लेकिन ये लैंग्वेज इतनी, संस्कृत इतनी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है, आई मीन रिच लैंग्वेज है, कि हर एक श्लोक का जो अर्थ होता है उसमें गुणगान तो विष्णु का ही होता है, लेकिन अधिकतर केस में ये इनडायरेक्ट होता है, तो ये लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, और कुछ कुछ जगह डायरेक्ट होता है तो उसको इग्नोर कर देते हैं ये लोग जो मायावादी होते हैं उसको। तो दिस इज द प्रॉब्लम विथ यू नो श्रीमद् भागवतम रचना करने का रीजन यही था कि लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। therefore प्रभुपाद has translated ईशोपनिषद, प्रभुपाद ऐसा चाहते होंगे कि आगे जाकर के जब अभी तो 10,000 साल है ना इसको हमको, तो अभी तो हम तो शुरुआत में है, तो प्रभुपाद ने ईशोपनिषद ट्रांसलेट किया है तो आगे जाकर के प्रभुपाद के फॉलोअर्स जो भी महत्वपूर्ण भक्ति के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है उसको ट्रांसलेट कर सकते आगे जाकर के। बट द फर्स्ट प्रभुपाद took ईशोपनिषद, he considered to be the best of all उपनिषदास, of course गीता, भगवद गीता ईशोपनिषद, गीता उपनिषद, लेकिन वो पंचम वेद से है और ये चार वेद में मुख्य चार वेद में से है, ये वो स्मृति में आता है, ये श्रुति में आता है।
प्रभु जी जैसे गीता भी गीतोपनिषद भी उपनिषद है तो उसकी रचना श्रीला व्यास देव जी ने की, तो मतलब हम इसको परंपरा के द्वारा कैसे समझें कि जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जैसे उसमें आते ना इमं वेद वसते योगम वाला
व्यास देव ने कंपाइल किया है, लेकिन है तो भगवान का डायरेक्ट मतलब मुख से निकला हुआ ज्ञान है, भगवान ने इसको कहा, बट इट इज जस्ट कंपाइलेशन। महाभारत इज एक्चुअली अ हिस्ट्री बट इट्स अ कंपाइलेशन। तो उस पर्टिकुलर ग्रंथ के ऑथर व्यासदेव है, लेकिन महाभारत हिस्ट्री के ऑथर व्यासदेव नहीं है। इसी तरह से भगवद्गीता को पब्लिश करने वाले व्यासदेव है फर्स्ट, लेकिन भगवद्गीता बोलने वाले व्यासदेव नहीं है। लाइक दैट
हरे कृष्ण बाबू जी। तो इसमें भगवान के बारे में बताया गया है सारा।
यस।
तो वेदव्यास जी ने मतलब भगवान ने वेदव्यास जी को कहा कि इस तरह लिखी है ऐसा।
मीन्स मैं समझा नहीं क्या कह रहे आप।
जैसे भगवद गीता में तो भगवान ने जो कहा वही लिखा है, भगवान की वाणी है, तो ये ईशोपनिषद है वो उसमें क्या आता है?
ईशोपनिषद में भगवान जो कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है और वो सबके स्वामी है, तो अनेक श्लोकों में इस चीज का महिमा बताया गया है कि भगवान किस तरह से स्वामी है सबके और वो एब्सोल्यूट है, वो पूर्ण है और सभी दृष्टिकोण से इज वर्शिपेबल गॉड।
तो ये वेदव्यास जी ने खुद से लिखा है ना, उनको तो किसी ने कहा नहीं कि आप लिखिए, बराबर।
पहला जो वेद था वो भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा, फर्स्ट वेद जो पहला वेद जन्माद्यस्य यतः, जो पहला श्लोक है भागवतम का, इसमें इसका वर्णन है कि भगवान तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। ब्रह्म हृदय, ब्रह्मा जी के हृदय में सबसे पहले जो वेद का ज्ञान शास्त्र का ज्ञान प्रस्तुत किया गया वो भगवान के द्वारा बोला गया था, भगवान के द्वारा बताया गया उनको। फिर वो एक वेद कई समय तक चलते रहे और फिर बाद में वेदव्यास जी ने उसी ज्ञान को जो भगवान ने दिया है उसी ज्ञान को चार अलग अलग भाग में उन्होंने बांटा, डिवाइड किया। उन्होंने अपना कोई मत इसके अंदर डाला नहीं है, उन्होंने वही वेद जो भगवान ने एक स्वयं बताया है उसी वेद के चार अलग अलग भाग बनाए, उसको सेक्शन बनाए, अलग अलग सेक्शन में उस ज्ञान को डिवाइड किया और फिर उसको और आसान बनाने के लिए हर एक वेद में से कुछ कुछ अंश जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो ऐसे कुछ कुछ अंशों को उन्होंने उपनिषद के माध्यम से प्रस्तुत किया। तो ईशोपनिषद इज पार्ट ऑफ यजुर्वेद, ईशोपनिषद जो है वो यजुर्वेद का अंश है और इस पर्टिकुलर ग्रंथ में भगवान की जो नियंता, भगवान जो स्वामी है सब चीज के, उस पर्टिकुलर क्वालिटी को ज्यादा एम्फसाइज किया, ज्यादा इसके ऊपर बल दिया गया है, दैट इज ईशोपनिषद। तो इस तरह से ये ईशोपनिषद ग्रंथ हमारे सामने आता है। तो इसका मूल रचना भगवान स्वयं विष्णु ने किया। ये थोड़ा आसान होगा।
ओके प्रभु जी। हाँ प्रभु जी। प्रभु जी एक वेद क्या होते हैं प्रभु जी? वेद मीन्स
सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद।
हाँ ये तो चार वेद है, ये जो भगवान ने चार डिवाइड किए हैं वो है, पर वेद मीन्स क्या होता है मतलब इसके अंदर?
वेद का अर्थ होता है ज्ञान।
ओके।
और वेद के विपरीत जो कुछ भी है वो है अज्ञान। और वेदों को बनाने वाले भगवान हैं। वेद में जो जिसको जाना जाता है वो है भगवान, और वेद को जो पूर्ण रूप से कोई जान सके कोई ऐसा व्यक्ति है तो वो भी है कृष्ण स्वयं। ऐसा आपने भगवद गीता में 15वें अध्याय में सुना था, पढ़ा था या इफ यू रिमेम्बर, 15वें अध्याय का 15वां श्लोक, वेदेश सर्वेर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। इसका बनाने वाला मैं हूँ, इसको जानने वाला मैं हूँ. दिस इज कृष्णस स्टेटमेंट इन भगवद गीता. तो वेद जो है वो वास्तव में कृष्ण के द्वारा बनाया हुआ है और उसमें से कृष्ण को ही जाना जाता है और उसको पूर्ण रूप से वेदों को एक ही व्यक्ति समझ सकता है, वो भी एक ही है कृष्ण. सो इस्कॉन में बीबीटी सबसे पहले यस क्वेश्चन.
चारों वेदों में
पूछिए
जी, चारों वेदों में कृष्ण के बारे में ही बताया गया है.
जितना भी ज्ञान संसार में अवेलेबल है, संसार में जो कुछ भी ज्ञान है वो सारा ज्ञान वेदों में आता है. जिसमें सब कुछ, जिस जो भी नॉलेज बोलते हैं वो सारा नॉलेज उसमें है. जैसे छोटे छोटे अंश के रूप में आयुर्वेद है, धनुर्वेद है, फिर मैथमेटिक्स है, फिर साइंस है, एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोनॉमी है, फिर फिजिक्स है, बायोलॉजी है, फिर ये जितना भी नॉलेज है, जो कुछ भी राजनीति है या फिर वर्णाश्रम धर्म है, जो कुछ भी है जिसको आप ज्ञान कह सकते हो, ये सारा ज्ञान वेदों से आता है. और इन सभी वेदों का जो उद्देश्य है वो ये है कि मानव समाज को क्रमशः तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सत्वगुण, और इस तरह से क्रमशः उनको धीरे धीरे करके योगा लैडर के माध्यम से उनको भक्ति योग तक लाया जाए. ये उनका उद्देश्य है वेदों का.
ओके ब्रो जी,
और कोई प्रश्न?
प्रभु जी, उन्होंने मतलब एक को चार में डिवाइड क्यों किया?
कलयुग की प्रजा को आसान करने के लिए, समझने के लिए आसान हो जाए इसके लिए. ऑर्गेनाइज किया उसको, ऑर्गेनाइज किया प्रॉपरली.
तो हर वेद का अलग मतलब कुछ महत्व होता होगा, कि यजुर् का अलग महत्व है, ऋग्वेद का अलग महत्व है.
यस यस, कुछ चीज में कुछ चीज ज्यादा बताई है, कुछ सामवेद में कुछ पर्टिकुलर विषय पे ज्यादा फोकस है, यजुर्वेद में पर्टिकुलर विषय पे ज्यादा फोकस है, ऐसे. तो इस तरह से अलग अलग वेदों को अलग अलग चीज को डिवाइड किया गया है.
ओके थैंक
यू. और
हरे कृष्ण बाबू,
यस फादर,
ऐसा कोई होगा कि जिसने ये चारों वेद पढ़े हो?
ब्रह्मा जी जो बनाए
हैं? नहीं, वो देवों की भी बात नहीं कर रहे, जैसे वो हम जो गुरु परंपरा में आते हैं, गुरु परंपरा में जो भी आते हैं.
गुरु परंपरा में तो बहुत सारे हैं, सो मेनी. जीव गोस्वामी, फिर हमारे मध्वाचार्य, और ऐसे बहुत सारे पंडित है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती.
अच्छा,
सो मेनी. लेकिन वेदों को पढ़ना और उसको समझना वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि ये लोग क्यों पढ़े है उनका मूल उद्देश्य वेदों को पढ़ना नहीं था. उनका मूल उद्देश्य केवल यही था कि भक्ति को अधिक सॉलिड प्रस्थापित करने के लिए उन्होंने ये वेद शास्त्र को देखा है. और एक रूप से देखा जाए कि भगवद गीता के विषय में कहा गया है कि what is that? भोक्ता जो गीता महात्म्य का एक श्लोक है, इसमें कहा गया है कि वेद, अगर वेद को गाय की तुलना दी जाए, अगर सारे वेद एक गाय के समान है और भगवद गीता जो गाय का दूध है वो भगवद गीता के समान है, दैट इज भगवद गीता. और उसको पीने वाला जो बछड़ा है वो अर्जुन है, और उसको दोने वाला जो गोपाल, दुग्ध गोपाल नंदना, तो उसको गाय को दोने वाला जो गोपाल है वो है कृष्ण, गोपाल नंदना. तो कोई बुद्धिशाली व्यक्ति वो जब भगवदगीता सामने हो तो फिर वो वेदों को एक एक करके समझने की क्यों जाएगा? वाई विल गो? अलग अलग वेद को समझने क्यों जाएगा वो? क्योंकि उसका मूल उद्देश्य तो उसका पर्पस सॉल्व होना चाहिए, वेद पढ़ने का पर्पस क्या है वो सॉल्व होना चाहिए. सो दैट इज द पॉइंट. चार्जर चार्जर.
थैंक यू प्रभु. हरे
प्रभु. जैसे पहले के टाइम पे मतलब चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट हुए उनसे भी पहले ये मतलब एज फॉर माय अंडरस्टैंडिंग ऐसा था कि मतलब लोग अभी जैसे जिस तरह से पति थे उतने नहीं थे और वो लोग फिर भी वेदों का अध्ययन करते थे और इसलिए उनको जैसे आपने बताया भक्ति को अच्छी तरह से प्रस्थापित करने के लिए वेदों का अध्ययन जो हमारे आचार्य थे उन्होंने अच्छी तरह से किया क्योंकि वो उनको कन्विंस कर सके, उनको डिफीट कर सके फिलोसॉफी में वगैरह. मगर अभी जैसे देख अभी तो मतलब ऑलमोस्ट नो वन इज इंटरेस्टेड इन स्पिरिचुअलिज्म, आध्यात्मिक में किसी भी जैसे किसी को रुचि नहीं है. तो अभी ये इन एनी वे इट इज नॉट एप्लीकेबल, राइट? नो बडी इज गोइंग टू आर्ग्यू. किसी किसी को कुछ पता ही नहीं है वेदों के बारे में तो कौन कुछ करने वाला है, राइट? सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट, सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट जस्ट फॉलोइंग भागवतम एंड भगवद गीता और इनके मैसेजेस इज इट सफिशिएंट इनफ टू प्रीच, राइट?
यस, बट हो सकता है कि आगे जाकर के हमें ऐसा भी जो 10,000 साल है कलयुग के, तो आगे जाकर के हमें कभी कभी आवश्यकता पड़ गई कि वेदों के डिस्क्राइब करने की आवश्यकता पड़े या उसको उपनिषदों को डिस्क्राइब करने की आवश्यकता पड़े, तो दैट कैन बी टेकन केयर, बट टाइम विल टेल अस. अभी आज के समय में वेद जो भगवद गीता कोई हाथ नहीं छूना चाहता नहीं है, तो वेद कौन खोलता होगा? और 1,000 में से 1,00,000 में से 1,000 ऐसा कोई पंडित होगा? जैसे आप अगर काशी में जाओगे तो वहां पर विद्यालय होती है, संस्कृत विद्यालय, और वहां पर आपको मायावादी का अड्डा अभी भी है, तो वहां पर आपको वेद को थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग होना आवश्यक है. लेकिन अगर आप अहमदाबाद में प्रीचिंग कर रहे हो तो अहमदाबाद को आपको मुश्किल से कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जिसको वेद वेदांत का ज्ञान हो. सो यू डोंट रिक्वायर एज सच टू स्टडी वेदास. और प्रभुपाद ने कहीं पर ऐसे मेंशन नहीं किया कि भक्तों को आगे जाकर के वेदों को पढ़ना चाहिए. प्रभुपाद ने कुछ ऐसा नहीं कहा. प्रभुपाद केवल इतना ही कहे कि आपको समझने के लिए जितना आवश्यक है वो मेरे ग्रंथों में सब मिल जाएगा. अगर आप उपनिषद 108 उपनिषद है तो प्रभुपाद ने इतना ही आवश्यक समझा कि हमारे इस्कॉन के भक्तों को केवल ये ईशोपनिषद समझ आ जाए तो बहुत है. दैट अदर उपनिषद आर नॉट इम्पोर्टेंट इन दिस स्टेज, इन दिस एज. सो प्रभुपाद हैज सिलेक्टेड विच वंस टू रीड, इसको पढ़ना है. सो वी डोंट नीड टू गो आउट ऑफ प्रभुपाद बुक्स. वट एवर यू नीड टू नो इज देयर इन माय बुक्स. प्रभुपाद सेड दिस. आपको जो कुछ जानना है वो मैंने अपने ग्रंथों में आपको सब मिल जाएगा.
थैंक यू ब्रो.
यस. तो
हरीश
यस ब्रो
क्वेश्चन. हां तो जैसे आपने यहां पे हमने डिस्कस किया कि तीन प्रस्थान है. हाँ. और उसमें न्याय प्रस्थान में वेदांत सूत्र आता है. और तो भक्ति इज नॉट पार्ट ऑफ द थ्री, एनी ऑफ द थ्री प्रस्थान. भक्ति जो में जो जो भी लिखे गए ग्रंथ है भक्ति के लिए.
भक्ति इज नॉट पार्ट ऑफ एनी प्रस्थान. ओके. भक्ति इज नॉट फ्रॉम वेदास और इज नॉट कमिंग फ्रॉम वैदिक साहित्य. भक्ति का जो खजाना है दैट इज मेनली कमिंग फ्रॉम चैतन्य महाप्रभु. भक्ति सिखाया उन्होंने, अपनी यात्री भक्ति सिखाई हो सब आगे. तो सनातन गोस्वामी चे गोस्वामी ने जिस ग्रंथों का उन्होंने स्थापना किया है भक्ति के भाई सिद्धांत को स्थापित करने के लिए, तो वो चैतन्य महाप्रभु ने उनको सिखाया उसके आधार पर. बट चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं ने उपनिषद और वेदों के रैंडमली श्लोकों का जो जैसे समझ लो कि एक पूरा बर्तन भर करके, एक पूरा भंडार भर करके बहुत सारे पत्थर है, लेकिन उसमें से कहीं पर हीरा भी उसके अंदर है, शाइनिंग करने वाला हीरा भी कहीं पर अंदर है, लेकिन इतने सारे पत्थरों के बीच में वो हीरा शाइन नहीं कर रहा है. लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया कि उन कांच के टुकड़े भरे हुए उसमें से जो एक्चुअल हीरा है, जो डायमंड रियल डायमंड होता है वो चैतन्य महाप्रभु ने चुन करके हमें दे दिया कि ये है वेदों का रियल डायमंड, तो वो रूप सनातन को दे दिया, बोले ये रखो डायमंड तुम, थोड़ी देर के बाद दूसरा डायमंड निकालो, ये रखो तुम, ऐसे सारे एक एक करके डायमंड निकाल निकाल करके सेव उत्सव को दे दिए। अभी इन सब डायमंडों को इकट्ठा कर करके, इन सब रत्नों को इकट्ठा करके तुम भक्ति के संबंधित साहित्यों की रचना करो, जिसमें हरि भक्ति विलास है, फिर नट्स ऑफ डिवोशन है, भक्ति स्थान होते, इन सब ग्रंथों को उस तरह से तुम इसकी रचना करो जो एग्जैक्टली फोकस करते हो शुद्ध भक्ति या भक्ति के संबंधित हो, जिसमें इधर उधर कोई बात ना हो। तो दैट इज चैतन्य महापुरुष कंट्रीब्यूशन, आई मीन इज मर्सी टू अस। इसलिए दैट कम्स द टोटल समरी ऑफ स्मृति, स्मृति एंड न्याय, तीनों का समरी माना जाता है जो छह गोस्वामियों के द्वारा जो चीज हमें प्राप्त होती है वो।
ओके, सो जो जैसे जीव गोस्वामी ने छह संदर्भ लिखे थे वो भी इट कैन बी आल्सो कंसीडर्ड एज एन एसेंस ऑफ ऑल द थ्री प्रस्थान्स।
यस,
और एक और ऑन द लाइन की जैसे न्याय सेक्शन में वेदांत सूत्र है रूपी, सो जो वेदांत जो बलदेव विद्याभूषण ने जो भी कमेंट्री की हुई थी गोविंद भाष्य, और
गोविंद भाष्य,
हाँ गोविंद भाई, यस, तो वो भी न्याय सेक्शन में ही आते हैं।
यस यस, वो रिक्वायरमेंट थी उस समय की, देयर वाज इसके साथ कथा जुड़ी हुई है, वो रिक्वायरमेंट, वो चैतन्य चरितमानस में उसकी कथा आती है, प्रॉपर लिखते हैं उसके विषय में कि बलदेव विद्याभूषण को ये गोविंद भाष्य लिखने का कोई इंटरेस्ट नहीं था, उनको ऐसे कोई रिक्वायरमेंट उनको नहीं लगी थी, लेकिन वो जयपुर में रहते थे उस समय बलदेव विद्याभूषण, और लेकिन वैष्णव जैसे किसी यूनिवर्सिटी में किसी को प्रोफेसर बनने के लिए वो पीएचडी के लिए थीसिस लिखना पड़ता है ना, थीसिस, तभी उसको एक प्रॉपर संप्रदाय के रूप में माना जाता है, आई मीन प्रॉपर पीएचडी माना जाता है। तो वैष्णव को मान्यता देने के लिए, वैष्णव सिद्धांत को मान्यता देने के लिए, उसको प्रस्थापित करने के लिए मायावादी सन्यासियों ने और सब लोगों ने ये डिमांड की थी कि वेदांत सूत्र पर जिसने भाष्य लिखा हो केवल उसी व्यक्ति का सिद्धांत को एक्सेप्ट किया जाता है, थीसिस के रूप में जैसे बोलते हैं ना, तो भाष्य लिखना पड़ता है, तो इसलिए फिर उन्होंने वेदांत सूत्र के ऊपर भाष्य लिखा। लेकिन बाद में वो सोच रहे कि मैं क्या भाष्य, भाष्य का टाइटल क्या दूं, टाइटल क्या, तो वहां पर तो रूप गोस्वामी के राधा गोविंद जी विग्रह है, तो राधा गोविंद जी विग्रह को निरंतर उनकी पूजा, उनकी चिंतन करते रहते थे, तो इसलिए उन्होंने उस भाष्य का नाम बनाया गोविंद भाष्य, therefore he returned the name is गोविंद भाष्य, this is the reason, otherwise he was not much interested, but because he was asked, उनको बोला गया वैष्णव के द्वारा कि आप एक भाष्य की रचना कीजिए, इसलिए उन्होंने गोविंद भाष्य लिखा।
ओके, थैंक यू भाई।
यस, मोर क्वेश्चंस। देखिए आप, हम तो केवल अभी तो शुरू भी नहीं किया ईश्वर परिषद, हम तो केवल वेदों का संक्षिप्त समरी बताए हैं, फिर भी देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस बिकॉज़ इटसेल्फ वेदास आर सो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड।
प्रभु जी अभी मतलब जैसे ये वाले डिस्कशंस कभी होते नहीं, हम तो एकदम भक्ति रिलेटेड।
आई वेलकम देम, आई एम हैप्पी, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग, नो पूछिए क्वेश्चन।
और उसके साथ ही प्रभु जी जैसे दूसरे लोग भी जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, तो फिर उससे और दिमाग चलते हैं, अरे हाँ ये भी बात सही पूछ रहे हैं, हाँ मतलब हमें भी नहीं समझ में आ रहा
है। या दैट इज फाइन, आई मीन देखो जितना मुझे जितना आंसर मेरे पास सामने है वो तो मैं आपको दे देता हूँ, लेकिन जो आंसर मेरे अचानक एकदम मेरे माइंड में नहीं होते, दैट आई नीड टू रिफर, फिर आई हैव टू आस्क, मुझे देखना पड़ेगा।
हरे कृष्णा।
यस प्रभु।
प्रभु एक थोड़ा कंफ्यूजन था, मतलब जैसे हमने जीओएसडी सेशंस में भी ये चीज को देखा है और मतलब काफी बार ये डिस्कशन हुए है कि जैसे जो पुराणों का जो क्लासिफिकेशन हुआ है अकॉर्डिंग टू थ्री डिफरेंट मोड्स, तो और उसमें सत्व गुण रजोगुण तमोगुण उसमें, तो उसमें प्रिसाइसली आप कुछ थोड़ा बता सके कि मतलब ऐसा नहीं है कि सत्वगुणी व्यक्ति ये करते हैं या रजोगुणी व्यक्ति इसका करते हैं या कौन उसको मतलब प्रिडोमिनेटिंग डीटी वगैरह, सो कुछ स्पेसिफिकली इन वेरी ब्रीफ वो इफ यू कैन मेंशन।
या इन ब्रीफ आई से यू से इन ब्रीफ, सो आई टेल यू इन ब्रीफ दैट
नो प्रभु सॉरी आई डिडंट मीन दैट, मतलब अगर आप बिल्कुल
आई वुड सजेस्ट कि इस विषय को ब्रीफ में ही समझना ज्यादा ठीक रहेगा क्योंकि एनीवे हमारा सब्जेक्ट मेरे ईशोपनिषद है, बट बिकॉज प्रभुपाद ने इंट्रोडक्शन में इस विषय को समरी के रूप में अगर आप देखोगे तो मुश्किल से 2-4 पेज होगा, ज्यादा नहीं होगा इस विषय में पूरे बुक में से, बट आई टेल यू अबाउट व्हाट आई अंडरस्टैंड फ्रॉम पुराणस कि रजोगुणी सतोगुणी पुराण, रजोगुणी लोगों के लिए पुराण और तमोगुणी लोगों के लिए जो 6 पुराण, इस तरह से अलग अलग गुणों के लिए अलग अलग पुराणों का वर्णन आता है। इसका अर्थ ये नहीं होता है कि ये पुराण जो है वो 3 गुणों से कंटामिनेटेड है, इसका अर्थ इस तरह से माना समझना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति तमोगुणी वृत्ति से दूषित है जिसमें तमोगुण का प्राधान्य है तो उसको तो उद्धार करने के लिए उसको सही मार्ग पर लाने के लिए उसको ये कहा जाता है कि भाई तुम्हारा सेक्शन यहाँ पर है, इसका अर्थ होता है कि तुम्हें जो चाहिए वो यहाँ मिल जाएगा, तो उसमें आपको कई ऐसी चीजें मिल जाती है कि उनको उनकी जो भौतिक कामनाएं होती है उसको पूरा करने के अनुष्ठान और उसके गाइडेंस और उनका गुणगान और ये सब उसके लिए डिटेल में पूरा विस्तार से बताया जाता है, बट आइडिया यहाँ पर एक ही है टू ब्रिंग देम अप वन बाय वन, एक एक करके उनको ऊपर लाया जाए आकर्षक, जैसे हमने पहले पढ़ा था योगा लेटर में कि वो लोग ऐसे भी भगवान को नहीं मानते लेकिन उनको भगवान को मनाने के लिए उनको कुछ प्रयोजन प्रलोभन देना पड़ता है कि तुम्हें ये चाहिए ना तुम इधर आ जाओ वेदों के पास, मैं हम तुम्हें एकदम बढ़िया चीज बताएंगे, बढ़िया चीज मिलेगा आपको, तो दिस वे दे टर्न टू वेदास एंड पुराणास एंड देन दे ग्रेजुअली कम अप, दैट इज द मेन पर्पस, अदरवाइज ये तीनों 18 पुराण जो भी है उसमें विष्णु का ही गुणगान है मेन। व्हाई इट इज सो, क्योंकि उद्देश्य एक ही है कि जो भी भक्त जो भी व्यक्ति किसी भी गुण में रहता हो प्राधान्य रूप में वो व्यक्ति धीरे धीरे करके विष्णु के पास जाए, दैट इज द आइडिया बिहाइंड इट, दैट इज व्हाट योर क्वेश्चन राइट, यही क्वेश्चन था और कोई प्रश्न था? You are asking something else or this?
I think Premrath Prabhu, I think
he left by mistake.
Left by maybe some network issues. So we वापस join करेंगे probably. कुछ
दूसरी बार जब पूछे तो रमा आप इसको describe कर देना।
हाय कृष्णा, यस प्रभु, थैंक यू प्रभु।
हाँ ओके।
नो आई लिसन, मैं पूरा सुना प्रभु, मगर मैं अनम्यूट करने गया तो डिस्कनेक्ट हो गया।
That's fine, no problem. Okay. But I think this was the question you are asking.
Yes.
हरे कृष्ण प्रभु, मुझे भगवत गीता में भी वो ही दिया हुआ है जो इसमें दिया हुआ है, तो फिर ये क्यों अलग से बात, भगवान के गुणों के बारे में ही बता।
हाँ लेकिन ये प्रश्न आपको लगता है ये कुछ उचित प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न अगर आप आप मुझे पूछ रहे हैं लेकिन ये प्रश्न प्रभुपाद को पूछना चाहिए ना किसी को कि प्रभुपाद जी आपने ये ईश्वर निषद का ट्रांसलेशन क्यों किया। एक्चुअली प्रभुपाद जी ने ही ये 4 ग्रंथों को भक्ति शास्त्री कोर्स के अंदर शामिल किया है, अगर आप उनका लेटर देखेंगे तो उस लेटर में प्रभुपाद जी ने ये 4 का नाम खुद ने लिखा है कि भगवद्गीता, ईशोपनिषद, नेक्टोपनिषद, दिस इज प्रभुपाद सिलेक्टेड बुक्स। और ईशोपनिषद ग्रंथ में वेदों का जो सार है वो भगवद्गीता में तो मिल ही जाता है, लेकिन प्रभुपाद चाहते है कि जैसे भोक्ता रहने की तपस्या या फिर अहम सर्वस्व प्रभव, ये भगवद्गीता का श्लोक है अहम सर्वस्व प्रभव, तो इस श्लोक को एक ही ऐसा श्लोक है भगवद्गीता का जिसको सारा ये ईशोपनिषद उसके अंदर कवर होता है अहम सर्वस्व प्रभव में, लेकिन प्रभुपाद चाहते थे कि ये पर्टिकुलर भगवान का जो गुण है कि सारी सृष्टि के एकमात्र स्वामी वो भगवान है, तो उस विषय को थोड़ा विस्तार से भक्तों को समझना चाहिए। तो इसलिए श्री प्रभुपाद जी ने इस ग्रंथ को इस कोर्स के अंदर रखा है। That is one of the reasons. ऐसे भगवद गीता में सब कुछ है, भगवद गीता में तो भगवत भक्ति योग का महिमा भी बताया है। स्टिल भक्ति योग के भगवद गीता को कहा जाता है प्राइमरी नॉलेज, श्रीमद भागवत में हायर सेकेंडरी, और चैतन्य चरितामृत इज अ पीएचडी नॉलेज यूनिवर्सिटी। तो इसलिए भगवद गीता बेसिक नॉलेज है, लेकिन उसका एक अंश जो महत्वपूर्ण है कि भगवान सबके स्वामी है, उसको ईशोपनिषद के माध्यम से विस्तार किया जाता है। वो भी ज्यादा नहीं है, कुछ कुछ श्लोक है, ज्यादा नहीं है, नॉट मच। सो अच्छा है समझ जानने में क्या प्रॉब्लम है, इट इज बेटर टू नो सम मोर अबाउट कृष्ण, मोर अबाउट कृष्ण।
मुझे ये क्वेश्चन नहीं पूछना था ऐसा
आपका प्रश्न। अच्छा आप ये अच्छा ये कह रहे कि ये प्रश्न मुझे नहीं पूछना चाहिए। नहीं नहीं कोई बात नहीं, प्रश्न पूछने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो मन में जो आता है उसको क्लियर करना अच्छी बात है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम।
हरे कृष्ण बाबू।
हाँ जी।
भगवद गीता में ऐसी कौन सी बात है जो और शास्त्रों में नहीं है, और जो भगवद गीता में है वो सब शास्त्रों में है ही?
भगवद गीता में है वो सब शास्त्रों में है, यस। कुछ ऐसी चीज
है
जो किसी शास्त्र में नहीं है।
हाँ।
इज मन मना भव मत भक्तो, जो दूसरे वैदिक साहित्य में नहीं है, अर्थात सब जगह है लेकिन इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड, इतना क्लियर कट कहीं नहीं बताया भगवान ने। मुझ में मन लगाओ, मेरे भक्त बनाओ, ऐसा डायरेक्ट किसी शास्त्र में स्पष्ट रूप से, इतना स्पष्ट रूप से एक ही साथ नहीं बताया। सर्वधर्मान परित्यज्य, ऐसा भगवान कभी नहीं बताया एक साथ। दिस इज भगवद गीता का स्पेसिफिक स्पेशल है, ऐसा भक्ति अमाम अभी जाना थी, केवल भक्ति से मुझे जाना जाता है। ऐसा
ओके।
और प्रश्न पूछिए
प्रभु जी। प्रभु जी दो दो प्रश्न है। एक मतलब ये ऐसे किसी डिवोटी से सुना है इसीलिए पूछ रहे। तो एक था कि वेदों में ऐसा बोला जाता है, मतलब ऐसे तो काउंटलेस है उसमें, पर फिर भी एक एक बस एक वेद काउंटिंग के लिए 1,00,000 x 1,00,000 वर्सेस है।
यस, और इसमें से अधिकांश वेद का जो अंश है वो पृथ्वी लोक के लिए, पृथ्वी लोक निवासियों के लिए नहीं है, ऊर्ध्व लोक के लोगों के लिए, स्वर्ग लोग आदि।
अच्छा, ये चारों वेदों को, चारों वेदों में से कुछ भाग।
हाँ, अधिकतर अंश, जैसे यहाँ
अधिकतर
25% ही पृथ्वी के वालों के लिए,
ठीक है,
सब ऊपर है स्वर्ग वाले लोग के लिए।
ओके प्रभु जी। और दूसरा था कि जो पुराण है प्रभु जी, 18 पुराना है, तो उसमें जैसे अभी आपने 6,6,6,6 जो पुराण है वो हर अलग अलग मोड्स में, मोड्स के लिए डिवाइडेड है, और उसमें ऐसा ऐसा है कि कभी कभार जैसे अगर ये कुछ चीजें, कुछ इंजंक्शंस हैं जो अपेरेंटली कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, जो अगर मानो कि अगर मोड ऑफ इग्नोरेंस के पुराण जो है उनमें से उनका कुछ चीजें अगले नेक्स्ट मोड से, नेक्स्ट पुराण से, नेक्स्ट छह कैटेगरी छह पुराणों में अगर कॉन्ट्रडिक्टरी है, तो उसमें मोस्टली वो वाला लिया जाता है कि जो ऊंचा वाला है, जैसे अगर मतलब पूरा मेक सम सेंस।
I couldn't get what you mean to say.
No. मतलब प्रभु जी जैसे अभी कुछ चीजें कुछ इंजंक्शंस या कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो अभी तीन कैटेगरी के पुराण हैं, जिसमें अगर इग्नोरेंस तमोगुण में जो पुराण जो बिलोंग करते हैं उसमें उसमें कुछ दिया हुआ है, पर उसके ऊपर वाले में, यानी रजोगुण में कुछ और दिया हुआ है और पर अलग अलग दिया, मतलब टॉपिक एक होगा पर अलग चीजें दी हुई हैं। तो जो हाँ, तो जो जैसे अगर रजो और सत्व में कॉन्ट्रडिक्शन है तो सत्व वाले को लिया जाए, ऐसा ऐसा कुछ समथिंग।
इट इज समथिंग लाइक समझ लो कि अस्पताल में कोई आता है, कोई बोलता है कि भाई मेरा पेट का प्रॉब्लम है, तो उनको बोलता है कि तुम जाओ इधर इस डिपार्टमेंट में जाओ। फिर दूसरा कोई आता है बोलता है मेरा सिर दर्द हो रहा है, तो तुम इस डिपार्टमेंट में जाओ, लेफ्ट में जाओ, इस फ्लोर पे जाओ। लेकिन हॉस्पिटल का जो मूल उद्देश्य एक ही है कि तुम स्वस्थ होकर के घर जाओ। आइडिया यही है कि तुम स्वस्थ, वही है हॉस्पिटल इज फॉर दैट ओनली। सो शास्त्र का उद्देश्य एक ही है कि स्वस्थ होकर के जाओ। अगर हम सीधा कान पकड़ दे तो अच्छी बात है, लेकिन बोलता है मुझे नहीं पकड़ना है सीधा कान, तो फिर उसको घुमा के पकड़वा दे, बोला अब ठीक है, बोला अब ठीक है, तो दिस इज द वे।
तो मतलब जैसे अगर कोई, जैसे माता जी ने जो क्वेश्चन पूछा वही कंटेक्स्ट में मैं कुछ वही क्वेश्चन पूछ रहा था तो समझने के लिए। तो जैसे अगर कोई व्यक्ति, जैसे हमारे फ्रेंड या रिलेटिव या कोई, जैसे मतलब जो ज्यादा फेवरेबल नहीं है मगर वो थोड़ा बहुत उनको पता है वेदों के बारे में और डिबेट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जस्ट हेल्दी डिस्कशन, तो मतलब ये 15:15 जो श्लोक है सर्वस्व चाहम सदिविनिष्ठो, तो उसके भगवद गीता की अथॉरिटी पे हम वो एक श्लोक हम उनको कोट करके हम देन व्हिच दैट इज गुड इनफ राइट टू
कोट फ्रॉम हियर,
ये जो सर्वस्व चाहम सदी हरि सन्निविष्टो, ये 15:15 राइट। ओके ओके,
मोर क्वेश्चन, ओनली 4 मिनट टू गो, बताइए मोर क्वेश्चंस।
प्रभु जी, श्रील प्रभुपाद जी ने श्री ईशोपनिषद का ही ये क्यों किया है? प्रभु जी वैसे आपने आंसर बता दिया था, पर अगर कुछ कुछ अलग है इसमें तो आप बताएं।
I have to check it, but जैसे मैं समझता हूँ तो हमने पहले इंट्रोडक्शन में प्रभुपाद जी ने इस विषय का वर्णन किया है कि why प्रभुपाद is translating, because this is the specific importance of this particular Upanishad is to make it clear that supreme personality of Godhead Krishna is the controller and the master of everything. This point he wants to establish.
Okay, and मतलब जितने भी उपनिषद, ये ईशो, हाँ जितने भी उपनिषद हैं, तो दिस उपनिषद यानी कि ईशो उपनिषद, दिस इज दिस हैज मोर डायरेक्टली दिस हैज इसमें ज्यादा स्पष्ट रूप से भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण के बारे, क्योंकि बाकी सब में हम शायद जैसे वेद में से हम ज्यादा कुछ समझ नहीं सकते इतनी आसानी से भगवान के बारे में, तो ये सबसे ज्यादा भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण के समीप ले जाने में मदद करता है, क्योंकि आपने इसका नाम का भी अर्थ बताया था, तो इसीलिए बस इस ग्रंथ, इस उपनिषद को ही प्रभुपाद ने चूज किया था, तो चूज किया है।
यस, आई मीन दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड, बट इफ यू, बहुत सारे भक्तों की इच्छा है कि वी मस्ट नो दैट इस उपनिषद का अधिक महिमा जानना है, आई कैन गेट सम मोर डिटेल एंड कैन कम बैक टू यू।
ठीक है,
हरे कृष्णा। प्रभु सॉरी, दिस इज लास्ट क्वेश्चन। प्रभु ये जैसे माता जी वो क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो उसके बारे में मैं ऐसा क्वेश्चन एंड ऐसा भी है, तो जैसे ईशोपनिषद के बारे में मुझे ये अनुभव है कि जैसे मैं प्राग में था तो वहां पे इट वाज वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग बुक्स, वो सबसे ज्यादा वो मतलब छोटी बुक्स में ईशोपनिषद वो सबसे ज्यादा वो सेल होती थी। तो मतलब आपसे ये एक रिक्वेस्ट भी है कि अगर बहुत सारे भक्त ऐसे हमारे संस्था में ऐसे है जो ईशोपनिषद को पढ़ के भक्ति में जुड़े हैं और बहुत सीनियर डिवोटीज भी, तो अगर आप एकाध कोई अगर आपके ध्यान में है और कुछ रियलाइजेशन या कुछ आपका एक्सपीरियंस बता सकते हैं, तो वो तो कोई भक्त का रियलाइजेशन प्रभुपाद के डिसाइपल या कोई और लीला आपने सुनी।
जय श्री मदिरंजन प्रभु। यशोमती नंदन प्रभु कृष्ण बुक पढ़ करके इस्कॉन में जुड़े थे, लेकिन जैसे यशोमती नंदन प्रभु ने ये इस्कॉन में जब नए नए आए थे तो उनको वहां पर मंदिर में शिकागो मंदिर में ज्वाइन किए थे, तो उस मंदिर को सबसे वहां पर सबसे पहले उनको यही बताया गया वहां के जो डिवोटीज थे कि आप लोग सबको ईशोपनिषद ग्रंथ को कंठस्थ किया गया, उनको कहा कि आप ये ग्रंथ को कंठस्थ कर लो पूरा, जैसे शिक्षा करते ना वैसे। तो यशोमती नंदन प्रभु मुझे बता रहे थे कि हम लोग इसको रोज पूरा ईशोपनिषद पूरा एक साथ बोल लेते थे एवरीडे, और इट इज सो नाइस और इतना सो ट्रांसेंडेंटल। और प्रभु जी बताते थे कि वो कब कब ये उच्चारण करते थे, मंगला आरती 4:30 बजे उठने से पहले जब स्नान करने के लिए वो जाते थे बाथरूम में, तो नहाते नहाते सारा ईशोपनिषद बोल लेते थे, जस्ट बाय टेकिंग बाथ पूरा ईशोपनिषद उच्चारण कर लेते थे, और उसके बाद देन उनका दिन का शुरुआत होता था। एंड ही वाज फीलिंग इट इज सो एनलाइवनिंग एंड इट सो ट्रांसेंडेंटल, कि इतना अच्छा उनको अनुभव होता था। तो इवन टुडे आल्सो अगर आप ईशोपनिषद की बात करेंगे तो प्रभु जी को सारे ईशोपनिषद के श्लोक का कंठस्थ है, एक एक श्लोक आपको वी कैन डिस्क्राइब पूरा डिटेल में, वेरी वेल वर्स इन ईशोपनिषद आल्सो।
ओके थैंक यू प्रभु।
मोर क्वेश्चंस? No questions. Anyway, so ये ईशोपनिषद की जो फर्स्ट पब्लिश्ड पब्लिकेशन बीबीटी का जो आया था वो 1970 में आया था फर्स्ट पब्लिकेशन, तब से इस्कॉन में ये ईशोपनिषद का ग्रंथ प्रसिद्ध हुआ और भक्त लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट करने लगे, और साथ साथ में इसमें रूपा जी ने ये सब इंट्रोडक्शन में ये सब लिखा है कि किस तरह से वेद जो है वो सब प्रकार के जो अलग अलग प्रमाण है उसमें why how these Vedas are so important for human life, वेद जैसे आप लोग 6th कोर्स में पढ़ाते हो ना कि अनुमान प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण वगैरह, तो दिस इज द इम्पोर्टेंट एविडेंसेस, जो वैदिक एविडेंस है वो सबसे उत्तम प्रमाण माना जाता है, और इसलिए जो शास्त्र को मानते हैं वो ही केवल वास्तव में इसको समझ सकते हैं। जैसे मायावती सन्यासियों ने जब चैतन्य महाप्रभु को पूछा था, चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा था कि वेदों की वेद जो है उसको तो कोई त्याग कर ही नहीं सकता, वेद का त्याग नहीं हो सकता, क्योंकि यही तो धर्म का मार्ग सिखाते हैं। वेद का बहिष्कार बुद्ध ने किया तो शंकराचार्य ने आकर के फिर से वेदों को स्थापित किया, क्योंकि जहां वेद नहीं होते वेद ना माने से नास्तिक, जो वेद नहीं मानते वो नास्तिक माने जाते हैं, इसलिए ये वेद को समझना बहुत आवश्यक है। और इस सब प्रकार की जो मानवीय गलतियां उससे मुक्त है सारे वेद। चैतन्य महाप्रभु को जब कहा गया था कि वेदों के विषय में मायावती सन्यास में, तो महाप्रभु ने कहा कि मायावती सन्यास ने ऐसा पूछा कि आप कृष्ण के महान भक्त हो, इसमें तो हमें कोई आपत्ति नहीं है कि आप ठीक है आप अच्छे सन्यासी हो, अच्छे कृष्ण हो, अच्छी बात है कृष्ण भक्त, और इससे हम सभी सन्यासी गण संतुष्ट है, लेकिन आप वेदांत सूत्र उसकी चर्चा हमसे क्यों नहीं करते? एक सन्यासी का एक कर्तव्य है कि वेदों की चर्चा करनी चाहिए, तो उसकी चर्चा क्यों नहीं करते? वेदों में क्या प्रॉब्लम है, वेदों की क्या प्रॉब्लम है? तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने उसका उत्तर दिया कि ब्रह्म प्रमाद विप्रलिप्सा करणा पाठव ईश्वरेण वाक्य ना ही दोष ए सब, ये 7वें अध्याय में है आदि लीला 7th chapter चैतन्य चरितामृत का, कि ब्रह्म प्रमाद विप्रलिप्सा करना पाठो, अर्थात 4 defects है मनुष्य में, 4 प्रकार की त्रुटियां है, वो शायद आपने से और यू वेल वर्स कौन बताना चाहता है, सबको पता है, पढ़िए बताइए।
कृष्णा
हाँ बताइए सबको बताओ
इम्परफेक्ट सेंसेस चीटिंग प्रोपेंसिटी एंड देन इल्यूजन एंड देन मेक्स मिस्टेक्स
यस तो ये चार ब्रह्म प्रमाद विप्रलिप्सा और करणापटो ये चार त्रुटियां है गलती करना मोह में गिर जाना मोहित हो जाना किसी को धोखा देना और अपूर्ण इंद्रियां ये चार मुख्य त्रुटियां है ये मनुष्य में पाई जाती है लेकिन ईश्वरेर वाक्य ना ही दोषे ये सब तो वैदिक शास्त्र में ये सारे दोष नहीं पाए जाते जो अपौरुषेय है शास्त्र जो पुरुष के द्वारा नहीं बनाए अर्थात किसी मनुष्य के द्वारा नहीं भगवान के द्वारा बनाए गए हैं उसमें ये त्रुटियां नहीं है इसलिए वेद जो है वो हमारे कृष्ण भक्ति का वैदिक साहित्य जो है वो भक्ति का एक रूप से आधार है कैसा आधार है क्योंकि वेद से बाहर कुछ है ही नहीं सब कुछ शास्त्र में है तो ये चार चीज कौन सी है गलती करना कहावत जैसा है कि टू एयर इज ह्यूमन राइट गुजराती में क्या बोलते है मानस मात्र भूलने पात्र तो बड़े बड़े गांधी ने भी मिस्टेक की थी जॉन कैनेडी ने भी मिस्टेक की थी ऐसा एग्जाम्पल आप प्रॉपर के उसमें पढ़ोगे आप उन लोगों ने भी मिस्टेक की थी तो दे मेड मिस्टेक एवरीवन मेक्स मिस्टेक तो मिस्टेक इज नॉट बिकॉज यू डिड मिस्टेक एवरीवन मेक मिस्टेक बट बिकॉज दिस इज ह्यूमन टेंडेंसी ये मनुष्य वृत्ति है इसलिए मिस्टेक इज अ दोष एक दोष है फिर मोहित हो जाना मोहित में क्या होता है यस्यात्म बुद्धि पुनपित धातु के ऐसा मानने लगता है मनुष्य ये तीन कफात पित्त से बना शरीर मैं हूं और मेरी जन्म भूमि पूज्य है और क्या है ये तीर्थ बुद्धि सवेरा करेगी जो तीर्थ
में जाता है कलर
व्हाट इज दैट सेकंड वन
स्वधि कला त्रिदिशु भूमिज्य धी तीर्थ बुद्धि सली लेना कर ही
जनेश्व विज्ञेशु दैव गोखला तो ऐसा मनुष्य जो मोहित हो जाता है वो मनुष्य होते हुए भी गधा माना जाता है गाय और गधे जैसा माना जाता है एनिमल माना जाता है सो दैट इज इल्यूजन इसका एग्जांपल आपको सबको पता है यू नो आई डोंट डिस्क्राइब इट सब आप जानते हो फिर भी बताता हूँ सूर्य का गोला है दूर दिखता है ऐसे बट इल्यूजन जैसे मिरेज वाटर जो दूर रेगिस्तान में पानी दिखता है वो मोहित हो जाना है वी गेट मोहित हो जाते हैं उससे फिर चीटिंग प्रोपेंसिटी का एक कोई जब यहाँ तक कि व्यक्ति मूर्ख नंबर एक होगा फिर भी वो सबके सामने यही प्रस्तुत करता है कि वो सबसे बुद्धिशाली है और अपना दोस्त होगा वो छिपाएगा और जो जो अपने आप को बहुत विद्वान इंटेलिजेंट प्रस्तुत करेगा बहुत ज्ञानवान तो लाइक दिस यू नो आज कल चिट्ठी में पहले के समय में फोन आता है तो लैंडलाइन पे फोन करते तो पता करते हैं आजकल तो मोबाइल पे होता है तो बोले क्या बोलते मैं बाहर गया हूँ ये नहीं ऐसा हुआ था एक बार एक व्यक्ति को मैंने लैंडलाइन पे फोन किया था मोबाइल नया आविष्कार हुआ था तो उसको आदत नहीं थी तो वो मुझसे बात नहीं करना चाहते थे या वॉट एवर तो मैंने उनको फोन किया मैं कहा भाई कहाँ पर हो आप बोले भाई मैं तो यहाँ पर हूँ मैंने उसके लैंडलाइन पे फोन किया था तो वो बोले वो तो मैं यहाँ पर हूँ तो फिर मैं कहा आप लैंडलाइन भी साथ में लेके जाते हो बोले मीन्स मेरे कहने का तात्पर्य कि मैं यहाँ जाने वाला हूँ मैं अभी घर पे ही हूँ ऐसे सो लाइक दिस यू नो कि पीपल वॉन्ट्स टू चीट आई एम इन मीटिंग यू नो सो दैट इज पीपल लाइक टू चीट इन चीटिंग प्रोपेंसिटी धोखा देते हैं बार बार यू नो आपको लगेगा कि कोरोना की ये लक्षण है फिर आपको बाद में मुझे किसी ने भी बताया कि आज तक एक भी ऐसा लक्षण गारंटी के साथ नहीं बताया कि कोरोना का ये लक्षण है एक भी ऐसा लक्षण है कि जो गारंटी के साथ बताया गया हो लाइक दिस पीपल वॉन्ट टू चीट चीटिंग प्रोपेंसिटी एंड इम्परफेक्ट सेंसेस का अर्थ क्या होता है अंधेरे में देख नहीं सकता है और हम भगवान देखना चाहते हैं। रोज सूर्य चंद्रमा को देखते हमें लगता है कि छोटा ही है, लेकिन बहुत बड़ा है, एक छोटी चीज का जैसा दिखता है। रात के अंदर में सांप अगर गिरा हो तो हमें लगता है कि रस्सी होती है तो दूर से ऐसा दिखता है कहीं बाहर में कि शायद ये सांप है। ऐसे आपके लाइफ में बहुत सारी चीज ऐसी हुई है, अंधेरे में आपको कुछ और दिखा लेकिन लाइट ऑन करने के बाद पता पड़ा रही है कुछ भी है, जो चमकता है वो दूर से ऐसा लगता है सोना है लेकिन वो सोना नहीं होता है। तो लाइक दिस हम बाजू वाले कमरे में क्या होता है सुन नहीं पाते, हमारी आंख के बहुत ज्यादा करीब होता है आईलिड्स, उसको देख नहीं पाते। सो इस तरह से इम्परफेक्ट सेंसेस, इसलिए वेदों को एक्सेप्ट करना चाहिए। ये प्रत्यक्ष प्रमाण ये सारे समस्या होती है, ये हम डायरेक्ट सेंस परफेक्ट सेंस के नाम आरोह पंथ माना जाता है, और अनुमान प्रमाण में इमेजिनेशन होता है, शायद ऐसा हुआ होगा शायद ऐसा होगा होगा, एंड देन शब्द प्रमाण, सो देयर इज अ हाईएस्ट प्रमाण शब्द प्रमाण। एंड आचार्य जो है वो उन सारे हमारे परंपरा के सारे आचार्यों ने वेदों को वेदास को स्वीकार किया, मध्वाचार्य विष्णु स्वामी रामानुज सबने वैष्णव संप्रदाय में सबने इस वेदों को स्वीकार किया है। और वेद को जो समझना है, क्योंकि वेद में ये स्पष्ट रूप से बताया गया है कि मनुष्य को आध्यात्मिक गुरु का शरण लेना अवश्य, और मुंडक उपनिषद में इस विषय में महत्वपूर्ण संदेश है, सगुरु एवाभिच्छेद। सो लाइक दिस वेदास आर कमिंग फ्रॉम कृष्ण ओनली, और गुरु के लक्षण क्या होते हैं कौन से वो सब वेदों में बताए गए हैं, तो इसलिए वेदास आर पार्ट ऑफ अवर कृष्ण कॉन्शियसनेस। बट एज आई से कि जो भी हमारे लिए आवश्यक है वो सब श्री प्रभुपाद जी ने एक एक करके निकाल करके हमें दे दिया है। सो दैट व्हाट वी आर स्टडिंग, दिस इज ओनली इंट्रोडक्शन वी टॉक अबाउट। हमने वो तीनों प्रमाण का डिटेलिंग नहीं किया, बट मुझे ऐसा ज्ञात है कि आप सब लोग खुद ही इसका प्रचार करते हो, इसलिए मैंने इसका ज्यादा डिटेल नहीं किया। शब्द प्रमाण क्या है, अनुमान प्रमाण क्या है, आप सब जानते हो इसको, और आप इसके ऊपर लेक्चर भी दे सकते हो, तो आई थॉट लेट इट बी। जिसको कोई समस्या है सो यू कैन आस्क मी, नेक्स्ट टाइम आई कैन टेल मोर अबाउट दिस। नेक्स्ट टाइम हम आवाहन बताएंगे, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम् उसके बारे में चर्चा करेंगे। मीनवाइल एनी क्वेश्चन विद दिस?
प्रभु जी जो श्री उपनिषद है उसमें 18 श्लोक है या
नहीं है? ईश्वर उपनिषद पूरा है इसमें।
ओके,
मोर क्वेश्चंस? ओके, सो वी कैन स्टॉप एंड देन नेक्स्ट टाइम इनवोकेशन और